ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਅਮੀਰ।
मुझे पूछें तो कह दीजिए कि सो रही।
बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जान, बहुत जहमत किया आपने।
मुझे बहुत खुशी हुई।
शुक्रिया। इसके डॉक्टरों ने दोबारा दवाइयाँ दी हैं।
ये सारी दर्द और सुकून की दवाएं उसके लिए नुकसानदेह नहीं है?
पता नहीं, वो घर वापस नहीं जाना चाहती।
क्यों नहीं, वापस जाएगी। उसका गम हल्का हो गया तो खुद ही वापस चली जाएगी। चाय लीजिए।
बहुत शुक्रिया, आप लीजिए।
डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया है।
अब इन हालात में सारा ने यहां आकर आपको जहमत दे दी।
सारा कोई गैर नहीं है, जितना उसके साथ रिश्ता और ताल्लुक तुम पर वाजिब है, मुझ पर भी है। जब तुमने उसका उम्र भर साथ देने का वादा किया है तो फिर उसको आखिर तक निभाना भी पड़ेगा। जब वो नखरा करे तो उसका नखरा उठाओ, जब वो नाराज हो तो उससे सुलह करो, बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करो। ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन अब जबकि उसके दिल पर चोट लगी है तो मुझे पता नहीं है कि अब मैं क्या करूं। इस एक चीज़ का पता नहीं है, मैंने ये इसकी किस्मत की लकीर में नहीं देखी थी। मैं बेबस हूं, अपनी बेटी के सामने मैं बेबस हूं।
मेरा ख्याल था कि सिर्फ मैं ही बेबस हूं।
हर मर्द मुसीबत के वक्त बेबस हो जाता है, मैं भी बेबस हो गया, इसलिए कि मेरे ख्याल में सबसे पहले मुझे मरना चाहिए था, लेकिन वरक पलट गया और अपने प्यारे नौजवान का दाग मेरे सीने पर लग गया।
सारा ने ऐसा काम किया है कि मैंने पैमान का दर्द भुला दिया।
उसने एक उम्र तुम्हारे साथ गुजारी है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसके साथ गुजार करो।
क्या हो रहा है यहाँ पर?
सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। तुम्हारे हेड और जूते कहाँ हैं?
माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, मैं भूल के आ गया हूँ, अभी जाऊँगा ले आऊँगा।
ख्याल रखो भाई।
जी ठीक है।
अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम सलाम। क्या है?
कमाल साहब, कमाल साहब
जी,
बल्दिया के अफराद हैं, आ जाओ।
कौन?
बल्दिया के अफसर।
आता हूँ आता हूँ।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम। क्या कर रहे हो?
दीवार बना रहे हैं।
ये दीवार तो मंजूरशुदा नक्शे के मुताबिक नहीं है। तुम्हारा निगरानी इंजीनियर कहाँ है?
निगरानी इंजीनियर आ रहे हैं।
तुम्हारा राजमिस्त्री कहाँ है?
सात वाली इमारत में है।
जाओ उनको आवाज दो, यहाँ आ जाए।
ठीक है जी।
जनाब सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत खुश आमदीद। कोई भी काम हो हाजिर हूँ।
देखिए यहाँ कुछ मुश्किलात हैं कि जो तुम्हारे सामने वाली इमारत में भी थी, और तय यह था कि इनको दूर किया जाएगा, लेकिन
जनाब अब आप बताइए क्या मुश्किल है। जो मुश्किल होगी दूर कर देंगे।
नहीं जनाब, पिछली बार भी यही कहा था। तुम्हारा ठेकेदार कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ।
इंजीनियर हिदायत साहब के बेटे का इंतकाल हो गया, कुछ अरसे से वो ऑफिस नहीं आ रहे।
तुम्हारा निगरान इंजीनियर कहाँ है?
वो रास्ते में अभी नहीं पहुँचे हैं। अभी उनको फ़ोन करता हूँ कि आ जाए। जनाब वो टेलीफोन का जवाब नहीं दे रहे।
अरे भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं अपनी रिपोर्ट देने पर मजबूर हूं।
कैसी रिपोर्ट? बिलाखिर इस दफा
बिलाखिर क्या कैसी बुजुर्गवारी? नहीं हो सकता
जनाब, इस मरतबा
नहीं नहीं हो सकता। मुझे अपनी रिपोर्ट देना होगी।
हेलो हेलो इंजीनियर साहब, हेलो।
इंजीनियर साहब आपके खुश नसीब घराने का अंजाम अच्छा नहीं हुआ।
अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब, लीजिए।
वालेकुम अस्सलाम। रहमत, तुम कब तक ये सियाह लिबास पहने रहोगे?
इंजीनियर साहब आपको मेरे सियाह लिबास से क्या काम है? उस मरहूम के सोग में है।
मुझे समझ में नहीं आता, किसी और का बेटा मरा है और तुम कयामत तक सियाह लिबास पहनना चाहते हो?
जनाब इंजीनियर हिदायत साहब मेरे बेटे की तरह हैं।
रहमत, तुम्हें अपने तमाम मौजूदा और गुज़श्ता बेटों की कसम, जिसकी भी इबादत करते हो उसकी कसम, ये सियाह लिबास उतारो। इसे देखकर मेरे दिल को कुछ होता है।
इंजीनियर साहब अपनी चाय पीजिए।
कितनी चाय पिलाते हो कि आदमी वॉशरूम ही जाता रहता है। कोई कॉफ़ी, कोई नेस्कॉफे, कोई अच्छी चीज़ पीने को दो।
जी बेहतर है, लेकर आता हूँ। फिलहाल इजाज़त दीजिए।
बहुत शुक्रिया।
ज़हमत की रहमत साहब आपने, कम से कम इन बुज़ुर्ग आदमी को तो छोड़ दो। इस कंपनी की कुछ ठीक नहीं है सिवाय इस चाय और नेस्कॉफे के, है ना?
इंजीनियर साहब और उनके बहन के अलावा के जो गायब हैं और क्या चीज़ जगह पर नहीं है?
इत्तेफाक से तुम्हारी अक्ल अपनी जगह पर नहीं है। बजाय इसके कि यहाँ बैठकर सबसे उलझो, उठो और इमारत में जाओ। मिस्त्री ने फोन किया था कि बल्दिया वाले आए थे और इतराज़ कर रहे थे।
अरे बाबा, हर रोज ये क्या चाहते हैं? इनके हाथों जलील हो गया हूं। उफ।
अरे भाई, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो इंजीनियर हिदायत के गरिमा पकड़ेंगे। खुदा को पसंद नहीं आएगा, वो बंदे खुदा सोचेगा ये चार दिन जो कंपनी में नहीं था तो यहाँ हर चीज उलट पलट हो गई है।
बस करो परवेज, बस करो, इतना मत बोलो। अचानक दूसरों के सामने भी तुम्हारे मुंह से बात निकल जाएगी तो सब लोग सोचेंगे कि हम इंजीनियर हिदायत के बगैर इस कंपनी को चलाने के अहल ही नहीं है।
हाँ तो नहीं है, बल्दिया एक तरफ से, दूसरी तरफ से इंश्योरेंस वाले, अगर हम बैठे रहे तो काम रुकवा देंगे।
मैं जानता था कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। तुम अपना दिल मेरे सामने हल्का करो।
फरीबोर्स, खुदा का शुक्र करो इंजीनियर हिदायत यहाँ नहीं है, वरना हम सब यहाँ से निकाले जा चुके होते।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, ऐसा कैसी हो?
खुश आमदीद इंजीनियर साहिबा, इस अरसे जब आप ऑफिस में नहीं थी तो बहुत सुना सुना लगता था।
शुक्रिया। और क्या खबर?
खबर ये कि काफ़ी लोगों ने आपको फ़ोन किया लेकिन आपके लिए पैगाम छोड़ा कि आप ख़ुद बाद में उनसे रब्ता कर लेंगी।
अच्छा, तो क्यों तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया?
मैंने सोचा कि अभी काम करने के लिए आपकी हालत अच्छी नहीं है।
अच्छा, किस किसने फ़ोन किया?
इजाज़त दें, अभी आपके लिए उसकी लिस्ट लेकर आती हूँ। ये लीजिए।
जाना,
बताइए तुम क्या कह रहे हो?
हाँ ठीक तो कह रहा हूँ, क्या इसके अलावा है कुछ?
आओ चले बाबा।
अंदर क्या बात है?
आओ चले।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हो इंजीनियर साहिबा, कैसी हैं? इंजीनियर हिदायत कैसे हैं?
कुछ ज्यादा अच्छे नहीं।
बहरहाल यहाँ आप और इंजीनियर साहब के बगैर रहने में कोई मजा नहीं है।
आपकी जरा नावाजी है।
इस अरसे में जब आप नहीं थी मैंने आपके कमरे में कुछ तब्दीलियां की हैं, अगर आपको अच्छी ना लगी तो बता दें, मैं उसे बदल दूंगी।
शुक्रिया।
ये बताओ, तुम जितना इजहार कर रहे हो वाकई उनको देखकर खुश हुए हो?
तुम इससे कोई मतलब मत रखो, आओ।
वाह वाह, क्या खाना बनाया है अम्मी ने, बहुत जहमत की है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
वालेकुम
मुझे
सलाम।
आप फिर इस बीमारी में जाकर खरीदारी कर रही हैं, हमेशा मुझे शर्मिंदा कर देती मुझे।
अरे बाबा, ये क्या बात है? मैंने देखा कि तुम्हारी गाड़ी दरवाजे के आगे खड़ी है, मेरे हाथ में भी चीजें थी इसलिए मैंने कहा घंटी बजा दूं।
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आए चले।
गोश्त के सालन के साथ गर्म रोटी और ताज़ा सलाद बहुत मजा देता है।
बाज़ौक भी हैं आप अम्मी, लेकिन अम्मी आपको जो कुछ भी खरीदना हो मुझे क्यों नहीं बता देती हैं? गाड़ी भी है मेरे पास।
अमीर बेटा, तुम बहुत मसरूफ़ हो, मेरे लिए तुम्हें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। तुम अगर अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक अच्छी सी दुल्हन ले आओ इस घर में।
फिर एक बात का बहाना बना के आपने शादी की बात छेड़ दी।
बेटा, मैं अब इस तन्हाई से बहुत थक चुकी हूँ, तुम भी तो सुबह से रात तक काम पर हो, या स्कूल में या फिर लेक्चर देते हो, फिर मस्जिद, फिर आज़ादारी।
जी जी, कहें कहें।
सुबह से रात तक मेरी आंखें इस दरवाजे को देखती हैं कि तुम कब आओगे। मुझे हमदम चाहिए, हमदम, समझे?
अम्मी अगर आप कहें तो आपके लिए कोई रिश्ता तलाश करूं।
अब मुझे इसी तरह टालते रहो, मैं तो तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें एक महीने की मोहलत देती हूँ, या तो खुद किसी का इंतखाब कर लो या फिर मैं ये काम करूँगी।
अम्मी बेहतर नहीं है कि हम अंदर चलकर खाना शुरू कर दें ताज़े सलाद के साथ? आए चले चले। امی آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ نہ کریں کام، لائیں لائیں مجھے دیں، مجھے دیں، میں دھو لوں گا۔ دیکھیں اب میں گھر کے سارے کام خود کروں گا تاکہ آپ کو مونس و ہمدم کی ضرورت نہ ہو۔
تم نے کہا ہمدم، مجھے ہمدم صاحبہ کی بیٹی یاد آ گئی، تم اس کو دیکھ لو، اتفاق سے وہ تمہارے ساتھ ایک تو کام کرتی ہے، ابھی حال میں ملازمت ملی ہے۔
لگتا ہے آج امی میں جو بھی بات کہوں گا آپ شادی کی بات کریں گی۔ دیکھیں اتنی امی اچھی ہیں میرے پاس، مونس و ہمدم بھی ہے، مجھے بیوی کا کیا کام۔
ہاں لیکن ماں تو ہمیشہ زندہ نہیں رہے گی۔
خدا آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔
شکریہ۔
جناب مبارک ہو۔
بہت شکریہ۔
خوش رہیں۔
بہت شکریہ آپ کا۔
دوپہر کے بعد میں کہوں گا کہ آپ کے لیے صوفے لے آئیں۔ جی فرمائیے۔
السلام علیکم۔
کوئی کام ہے؟
مجھے نہیں پہچانا۔
کیا مجھے پہچاننا چاہیے؟
بالکل۔ دیکھو میں تم سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں۔
جی کہیے۔
وہ یاسمن جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ میری پہلے سے منگیتا تھا۔
یعنی انہوں نے میرے ساتھ؟
دیکھو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے تم سے، انہوں نے، کن لوگوں نے، کس سے بھی۔ ہم دونوں بہت پرانے ہمسائے تھے، ہمارے ماں باپ نے آپس میں بات کی تھی، بات پکی ہو گئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا لیکن بہت کچھ ہو گیا تھا، بات آگے بڑھ گئی تھی، ہماری ماں نے انگوٹھی بھی خریدی تھی اس کے لیے۔
یہ ناممکن ہے۔
میں اپنے ابو کی جان کی قسم کھاتا ہوں، اپنی والدہ کی قسم کھاتا ہوں، جس کی بھی چاہو میں قسم کھا لوں، بس تمہاری زندگی سے باہر نکل جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو۔
چلو باہر، چلو باہر جاؤ۔
باہر میں جانے والا نہیں ہوں، مجھے بات کرنی ہے، پوری بات ابھی کہنی ہے مجھے۔
تم میری دکان ہے، چلو باہر نکلو۔
کرو میری پوری زندگی تھانوں میں، جھگڑوں میں، انہی چیزوں میں گزری ہے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں بہت
اپنی آواز اونچی مت کرو، یہ تو میری دکان ہے، چلو باہر نکلو یہاں سے۔
کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ابھی سن لو نہیں تو بعد میں۔
دیکھو میں کہتا ہوں اپنی آواز اونچی کرو۔
یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں، یہ میری والدہ ہے، یہ یاسمن ہے، یہ آسمان ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
یاسمن
ہے، مجھ سے نہ بھیڑو، میں بتا رہا ہوں۔
تصویر دو،
برا ہو جائے گا، میں بتا رہا
ہوں۔
کیا ہوا؟ نہیں پتا نیاکن صاحب، میں آپ کے اس بھتیجے کی حالت خراب کر دوں گا۔
یہاں کیا ہو رہا ہے؟
تصویریں مجھے تو میں نے کہا تم باہر نکلو یہاں سے، چلو میں کہتا ہوں تم سے۔
شرم کرو، یہ میری دکان ہے، آپس میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ اے لڑکے سنو، تم سے کس نے کہا یہاں ہو؟ میں نے کہا تھا کہ یہاں مت آنا۔
میں یہاں سب کچھ بتانے آیا ہوں، میں یہاں شہزادے کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میری منگنی ہو چکی تھی، لیکن اب آپ نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔
سب کچھ ختم کر دیا، باہر جاؤ، باہر جاؤ۔
نیاکن صاحب، میں ابھی آپ کی عزت کر رہا ہوں۔
مثلاً تم کیا کرنا چاہتے؟
پتا چل جائے گا۔
دیکھو
چھوڑو، یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، باہر جاؤ۔ گنڈا گردی نہ کرو یہاں، تم سے
میں پھر آؤں گا، میں بتاؤں گا تم کو، میں بتانے والا ہوں، میں جانے والا نہیں اتنی آسانی سے۔
یہاں کرو گے کیا تم؟ دیکھو میں تم سے کیا کہتا ہوں، میں صرف تمہارے مرحوم والدین کے احترام میں چپ ہوں، ورنہ یہیں پر تمہاری ایسی کی تیسی کروا دیتا۔
جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، میرے منہ پہ آپ تھوک دیجئے کہ اگر میں نے آپ کی لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی۔
مکرو چہرہ مجھے مت دکھاؤ، شرم کرو، جاؤ دفع ہو جاؤ، اور یہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، دوبارہ یہاں پر نظر مت آنا۔
تم بھی ذرا دھیان رکھنا ننھے بچے۔
میں نے کہا دفع ہو جاؤ، شرم کرو، گھٹیا لڑکے، جاؤ دفع ہو جاؤ، بدتمیز جاہل۔ اگر دوبارہ اس طرف نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، بے شرم جاہل۔ اگر دوبارہ تم کو یہاں دیکھا تو تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا، بدماش،
مغرور آدمی،
بے شرم، حیا تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، بدماش۔
یہ کیا بکواس کر رہا تھا چاچا جان؟
چھوڑو بیٹا، یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی چاہے گا وہ کر سکتا ہے، یہ سمجھتا ہے شہر میں قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ اور چلو تمہیں میں پوری بات بتاتا ہوں، اور چلو۔
نہیں بابا، انہوں نے حفاظتی جنگلے اور جالی پر اعتراض کیا، کل ان کے آنے سے پہلے ہمیں ان کو ٹھیک کرنا۔
آرام سے لڑکے، آرام سے۔
تو انہوں نے جالی پر اعتراض کیا ہے؟ اچھا،
Thank you.
पुया, पुया मेरी जान।
जी क्या हुआ?
उठो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ पुया, पुया उठ जाओ। लीजिए, थोड़ा सा सर भारी है, मेरा ख्याल है नींद की गोलियों की वजह से है।
आप कब तक हमारे पास रहेंगी?
जब तक तुम्हारी अम्मी वापस ना आए, लेकिन मुझे यकीन है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी। सारा भी तो आप लोगों के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती।
ऐसा नहीं है, लगता है वो हमारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती।
वो चाहती है कुछ अरसा उस घर की।
कौन सा घर मेरी बहन? खुद भी अच्छी तरह जानती हो बात इस घर और उसके गमो गुस्से की नहीं। वो मुझसे भाग रही है। ये रोजे रोशन की तरह वाजे हैं। वो चाहती है मैं उसके सामने ना आऊं।
क्यों बिला वजह इसका ताल्लुक उससे जोड़ रहे हैं?
ताल्लुक है, वो मुझे पैमान की मौत का जिम्मेदार समझती है।
लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है भाईजान।
हाँ ये बात तो तुम कह रही हो ना।
शायद वो ठीक कहती है। मैं और बाबा गाड़ी से जाना चाहते थे, अम्मी और पैमान चाहते थे हवाई जहाज से जाएं। और फिर अगर बाबा की मीटिंग ना होती तो जल्दी चल पड़ते, रात भी ना होती।
बोया बेटा, तुम्हारी अम्मी का ख्याल है कि मैं कसूरवार हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए कि मैं ड्राइविंग कर रहा था ना कि तुम। मैंने उस लानती मीटिंग को इतना लंबा किया कि रात पड़ गई। मैंने हवाई जहाज के बजाय गाड़ी में जाने की ख्वाहिश की थी, तुमने नहीं।
भाईजान कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ एकदम से बिखर गए हैं?
मुझ पर जो इतनी बदबख्ती आई है तो ताज्जुब की बात है कि बिखर गया हूँ।
कल भाभी की तरफ गए थे।
हाँ लेकिन काश ना जाता।
क्या आपको तवक्को थी कि आप जाएंगे तो वो घर वापस आ जाएंगी?
नहीं, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि मुझसे छुपेगी। हाँ तो मुझसे मिलने पर भी तैयार नहीं हुई।
वह सब कुछ ठीक कर देगा,
लेकिन बाज जख्मों को सिर्फ पुराना करेगा।
याद आया, कल मैं ऑफिस गई थी।
अच्छा क्या खबर?
कुछ ज्यादा तो पता नहीं चला। मैंने सिर्फ यजदानी साहिबा को देखा था, बाकी लोग इमारत की तरफ जा रहे थे। लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई चीज मुझसे छुपा रही है।
क्या चीज छुपा रही है?
मैं समझ नहीं पाई। मैसा ने पहले भी ऐसा किया था, यानी अगर खुद ना भी चाहे तो फरीबर्स उसको मजबूर करेगा। अमीर, मेरा ख्याल है कि इन हालात में ऑफिस को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इजाज़त दो तो मैं अपने काम पर वापस चली जाऊं।
ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, इस तरह मैं भी बेफिक्र हो जाऊंगा।
और तुम चाहते हो कि घर में बैठकर गम का इजहार करते रहो, और जबकि सारा भाभी भी नहीं है तो बेहतर काम पर आ जाओ।
मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता बचा है। मुझे खुद को काम में इतना मसरूफ करना है कि इसमें डूब जाऊं, ताकि हर चीज को भूल सकूं।
भाईजान क्यों इतनी मायूसी की बातें करते हैं?
क्या कोई उम्मीद बची है? पैमान तो चला गया, सारा को भी इतनी आसानी से मैंने खो दिया।
अभी बहुत जल्दी है कैसी बातें करें। आज मैं सारा भाभी से मिलने जाऊंगी। वादा नहीं करती कि मैं उन्हें वापस ले आऊंगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सारा खुद तुमसे चाहे कि उसे मिलने चले।
देखते हैं क्या होता है।
पुया बेटा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल पहुंचा दूं।
फुप्पो खुश हो जाएं सुन के, पढ़ाई और स्कूल की अब छुट्टी।
क्या कह रहे हो?
फिर शुरू कर दिया पुया।
ये क्या बातें कर रहे हो?
वो शख्स जो एक क्लास से दूसरे क्लास में चला जाता था मर गया। इतनी सारी पढ़ाई करके क्या हो जाएगा? पैमान की तरह मेरी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाए? उसने अपनी जिंदगी में पढ़ाई, किताब और इम्तिहान के अलावा देखा क्या?
बिलफर्ज पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे?
जिंदगी। अलबत्ता मुझे यकीन नहीं है कि जी सकूंगा।
पैमान के बगैर नहीं जी सकता।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
माफ कीजिए इंजीनियर हिदायत साहब,
आप?
इंजीनियर साहब, आप मुझे नहीं जानते। मैं उसी ड्राइवर का बेटा हूँ जिसके साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। मैं रजामंदी लेने आया हूँ कि वो जेल से बाहर आ जाएं।
तो तुम रजामंदी लेने आए हो? तुमने सोचा मजाक है? तुम्हारे बाप ने लोगों की जान ली है, तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा कि मैं सर को झुका लूँ और आगे चलूँ, उनकी कंपनी में परेड करूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा?
तो आप इंजीनियर हिदायत नहीं हैं?
उनका बेटा हूँ तो क्या?
मेरे बाबा ने जानबूझकर उस बंदे खुदा को नहीं मारा, मुमकिन था कि वो खुद भी मर जाते।
हाँ तो मुमकिन था कि इंजीनियर हिदायत का सारा खानदान ही मर जाता?
खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर ये तय हो कि मेरे बाबा सारी जिंदगी जेल में रहें तो?
फिर भी कम है। तुम्हारे उस लावाबाली बाप ने उस गाड़ी की इंश्योरेंस भी नहीं कराई है।
उनकी गाड़ी इंश्योर्ड थी, सिर्फ तकमीली इंश्योरेंस नहीं
हुई। बिल्कुल बेकार थी, उसे जाकर अच्छी इंश्योरेंस करानी चाहिए थी। अच्छे इंश्योरेंस लेता तो इस वक्त मुश्किल में ना होता।
उनका हाथ तंग था, जो कुछ भी कमाते थे वो कर्ज देने में और गाड़ी पर लगा देते थे।
देखो लड़के, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो अपने बाप के लिए ऐसे ही करता, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, अपने कान अच्छी तरह से खोलो और गौर से सुनो कि क्या कह रहा हूँ। इंजीनियर हिदायत की हालत वैसे ही ठीक नहीं है, चिरजाए कि वो यहाँ है और तुम्हारे इसलिए के साथ तुम्हारे मसायब सुने। जाओ अपना काम करो, जाओ।
मैं आज बड़ी ही मुश्किल से छुट्टी लेकर अपने शहर से तहरान आया हूँ।
शाबाश, अलबत्त तुम्हारे बाप के पास ये हिम्मत और अक्ल होनी चाहिए थी कि वो अपनी गाड़ी के कागजात की फिक्र करता। मेरा वक्त ज़ाया मत करो, जाओ यहाँ, दोबारा मत आना। चलो जाओ। हेलो हेलो हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का कौन था?
वालेकुम सलाम, कैसी हो? कोई नहीं।
क्या मतलब कोई नहीं?
कसम से, आप भी इतने सवाल ना पूछे तो बेहतर ही होगा। तशरीफ लाइए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, खुश आमद।
शुक्रिया। भाभी कैसी हैं?
क्या बताऊं, एक जगह मुजस्मे की तरह बैठकर सिर्फ दरो दीवार तकती रहती है। ना कोई बातचीत है और ना कोई खाना पीना, पता नहीं मैं उसका क्या करूं।
मैं आपकी इजाजत से उनको घर ले जाने के लिए आई हूं, आपके ख्याल में मान जाएंगी?
मैं नहीं समझता, वो बहुत ही सख्त हो चुकी है। पैमान की जुदाई का दाग उस कदर शदीद है कि अमीन उसकी नजरों से गिर गया है। वो अमीन को देखना नहीं चाहती है। मेरी सारा के जिसमें मैंने मोहब्बत और पाकीज़गी के अलावा कोई चीज़ नहीं देखी थी, अब बुग़्ज़ और कीने का पैकर बन गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये बात कहूँ, लेकिन एक बात कहूँ, अगर उसने कोई तेज़ और तल्ख बात की तो खुदा ना करे वो तुम्हें सीने में तीर की तरह जाकर लग जाए।
मैं भी आप जितना सारा भाभी को जानती हूँ, मुझे पता है कि उनके दिल में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ कहेंगी तो सिर्फ उदासी की वजह से है।
आइए।
शुक्रिया।
मैं चाय लेकर आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सारा। यहाँ कब्र की तरह अंधेरा क्यों है? मैं मानती हूँ कि दिल मुर्दा हो, लेकिन अभी आप जिंदा हैं और यह तय नहीं है कि खुद को जिंदा दरगोर कर दें। सारा, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे और गम में डूबी रहेंगी? मुझे पता है कि बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा तवक्को है भाभी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, कितनी चमचे शक्कर डालूं?
मैं शक्कर नहीं पीऊंगी।
लेकिन आप तो हमेशा मीठी पीती थी।
तुम चाहती हो मैं शक्कर से अपना कड़वा मुंह मीठा करूं?
नहीं भाभी, मैंने देखा कि आपका रंग पीला है तो मैंने कहा शायद आपका ब्लड प्रेशर लो है।
पूया कैसा है?
बेचारा बहुत टूट गया है। अगर उसे उसके हाल पर छोड़ देंगी तो मुमकिन है कि पढ़ाई छोड़ दे।
तो फिर उसके लिए रह क्या जाएगा? अमीन को ऐसा नहीं होने देना चाहिए।
भाई, तो आप क्या इतनी जल्दी आपने खुद को अलग कर लिया? सारा भाभी, पूया अभी हम सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। आपसे भाई की बीवी नहीं, पूया की माँ भी है। उसे सबसे ज्यादा आपका सहारा चाहिए।
जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता वो किस तरह दूसरों को सहारा दे सकता है?
आप हमेशा कहती थी मैं झुक जाऊंगी लेकिन टूटूंगी नहीं।
लेकिन इस बार मैं टूट गई।
सुने, आज मैंने भाई से कहा कि वो काम पर वापस आ जाए।
वापस काम पर? यानी इतनी जल्दी पैमान की मौत को भुला दिया?
नहीं, पैमान की मौत को नहीं भूला। देखो भाभी, हर कोई खुद को किसी तरीके से अपने आसाबी और नफसियाती दबाव से आजाद कर सकता है। आपने वालिद के घर आकर, यकीनन भाई भी काम पर वापस जाकर।
उसे पोया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
मैं भी आपसे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आपने क्यों उसको अकेला छोड़ दिया?
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मैं जानती हूँ भाभी, आप में पैमान की खाली जगह देखने की हिम्मत नहीं। इसी तरह भाई में भी अपनी बीवी और बच्चे की खाली जगह देखने का हौसला नहीं है। आप इस मुसीबत में क्यों अकेली रहना चाहती हैं?
काश मैं अकेली होती और सिर्फ अपने ही गम गलत करती,
बजाय इसके एक कोने में बैठी रहें और सब जितना गम उठाएं घर वापस आ जाएं और हमारे साथ रहें। इस तरह दर्द को बर्दाश्त करना सबके लिए आसान होगा। सारा,
मैं इतनी आसानी से अमीन को माफ नहीं कर सकती।
मैं नहीं कहती कि अमीन ऐब और बुराई से पाक शहर है, लेकिन अभी आपकी तरह उनके दिल पर भी दाग है और उन्हें आपकी ज़रूरत है जितनी आपको उनकी ज़रूरत है। भाभी, हत्ता अगर अपने गुस्से और दिल के दाग की वजह से उसका इनकार करें, इससे ज़्यादा आप अपने आप को अजियत ना दें।
पैमान,
हाँ।
इस इक्वेशन पर एक नजर डालें, देखें तुम्हारा ज़हन काम कर रहा है या नहीं।
दोबारा इन अजीब और गरीब सवालों से तुम मुझे फंसाना चाहते हो?
आप सिर्फ ये बताइए कि 1,00,000 से 10,000 के आदाद के दरमियान कितने होल नंबर्स मौजूद हैं जो सिर्फ 1, 2 और 5 अरकाम रखते हो?
अच्छा, तो पहले ये बताओ कि ये सवाल किस ओलम्पियाड का है जो तुम मुझे फंसाना चाहते हो?
प्लीज देखो ना, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। तुम इस प्यारे दिमाग पर जरा दबाव डालो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं।
अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी पेशानी को क्या हुआ?
क्या क्या हुआ? कुछ नहीं।
आ गया
मेरे प्यारे भाई,
बहुत चाहता हूँ तुझे।
हिदायत, तुमने मसला हल नहीं किया?
नहीं सर।
यह मसला तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए।
देखो लड़के, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तुम खुद नालायक हो, तुम समझते हो सब तुम्हारे जैसे हैं।
अब मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करो, समझे कि नहीं? अहमकों के सरदार, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हारे सवालात भी तुम्हारा भाई हल करता था, अब जब उनका इंतकाल हो गया तो तुम्हारी नालायक सामने आ गई।
देखो भाई का नाम मत लेना, तुम्हारा मुकाबला मुझसे।
दफा हो मेरे भाई, ये
पिटने का दिल चाह रहा है।
छोड़ो मुझे, जलील इंसान, बदतमीजी कर
रहा है। छोड़ मेरी, इधर आओ।
चुप रहो,
चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो,
जान से मार दूंगा तुम्हें। जब तक इसका बदला तुमसे नहीं लूंगा छोड़ूंगा नहीं तुमको।
क्या
जान से मार दूंगा बदतमीज इंसान। बदतमीज इंसान।
छोड़ो अभी मारूंगा इसे।
वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ जनाब? वहाँ क्या हो रहा है?
कुछ नहीं।
तुम एक बार फिर से कंट्रोल से बाहर हो गए? हाँ
सर, इसके भाई का इंतकाल हुआ है, वो बिलावजह इसको परेशान कर रहा है।
ज्यादा बातें बनाने की बजाय अपनी क्लास में जाओ। जाओ तुम दोनों मेरे दफ्तर में आओ, जल्दी करो, झगड़ा शुरू कर देते हैं।
सर मेरा बैग रह गया।
مثل چشمای تو مهربون باشه، مگه میشه عمری از تو بگذره؟ زندگی برام هنوز جوون باشه، مگه میشه؟ حتی آینه، حتی قاب خنجره، مثل عکسای تو دل بری نکن. حال امروزم و از کسی نپرس، دنیا با هیشگی برادری نکن. گاهی خاطر یه عکس قشنگ از تو دنیا و به قارت میبره، گاهی وقتا خیلی دلتنگ تو هم. این روزای بی هدف کی میگذره؟ این روزای